किसी चराग से रोशन नहीं किया खुद को, हम अपना आफताब साथ लेके चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में चुभन महिलाओं पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जहां हमें सम्मानित व्यक्तित्व को जानने का अवसर मिलेगा और अवसर मिलेगा उनके विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का भी। इस श्रृंखला में आज जिन्हें हम चुभन पर आमंत्रित कर रहे हैं, वे हैं लोकप्रिय कवित्री उर्मिला उर्मी जी, और उनके लिए कहा जा सकता है कि स्वर के बिना गीत अधूरा है और कर्तव्य बिन अधिकार। खुशबू की पहचान फूल से है, तो महिला अधिकारों का मंथन तब तक अधूरा है जब तक वो उर्मी जी द्वारा न किया गया हो। उर्मी जी के वक्तव्य वाद विवाद को पूर्णता में समेट लेते हैं। वे एक संवेदनशील कवित्री हैं और लीक से थोड़ा अलग हटकर लिखती हैं। आप गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की सदस्या भी हैं। तो आइए दोस्तों, आज सूरत गुजरात से उर्मिला उर्मी जी को सुनते हैं।
नमस्ते उर्मिला जी, चुभन के पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
नमस्कार भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जी। और उर्मिला जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं
जी। भावना जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और समस्त महिला जगत को, सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं
जी। और आपको बताना चाहूंगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे सप्ताह कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रसारित करेंगे, और जिसका आरंभ हम आज आपके साथ ही कर रहे हैं।
क्या बात है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि इसका शुभारंभ आप उससे कर रही हैं
जी, हमारे लिए भी उर्मिला जी। और एक और सुखद संयोग है आज की, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो इस दिवस की भी सभी को अनंत मंगल कामनाएं
जी। जी, उनका आशीष समस्त जग पर यूं ही बरसता रहे, यही कामना है।
और उर्मिला जी, शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव से संबंधित हम सब जानते हैं, और शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव का ही एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है, और अर्धनारीश्वर का रूप पुरुष एवं स्त्री को एक समान भाव पर लाकर खड़ा करता है। इसलिए आज जब हम महिला दिवस पर महिला पुरुष की समानता की बात करेंगे, तो इस पावन पर्व का महत्व तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा हमें।
एकदम एकदम सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। अर्धनारीश्वर की कल्पना ही इसी बात पर है कि आधा पुरुष आधा नारी, और वो सही कहा आपने कि समानता का परिचायक है, संतुलन का परिचायक है।
जी बिल्कुल जी। और आप जैसी लोकप्रिय और सुरीली कवित्री हमारे साथ है, तो अब हम आपको ही सुनना चाहेंगे, अब आप कुछ कहें
जी। महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है, महिलाओं की बात होती है, और उस विषय पर कुछ कहने को कहा जाता है, तो बहुत सारी बातें होती हैं
जी।
और अमूमन क्या होता है कि अगर कुछ कहा जाए तो ना सिर्फ पुरुष, ना सिर्फ समाज, बल्कि महिलाएं भी कई बार उससे अलग, उससे विपरीत सोचती हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये तो कहां नकारात्मक सी बातें लेकर बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि मैं जहां से देख रही हूँ, मैं जहां से देख पा रही हूँ, या आप जहां से देख रही हैं, शायद बहुत सारी लोग वहां से नहीं देख पा रहे हैं।
बिल्कुल।
तो उनके लिए जब कुछ कहने की बात आती है, तो सबसे पहले ये होता है कि क्या सबका जो सोच का जो तरीका है, जो मानसिक धरातल है, जो मानसिक भावभूमि है, वो जब तक एक सी नहीं होती है, तब तक एक सी बातें हर एक से लागू करती होंगी।
बिल्कुल।
लेकिन जब यहाँ पे अपनी बात कहने की बात आती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं तो खैर मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए गीत वगैरह भी लिखे हैं, मुक्तक लिखे हैं, बहुत काम करती रहती हूँ
जी, जी।
तो मैं जाहिर सी बात है इस पे अपना एक अलग वैचारिक दृष्टिकोण रखती हूँ, और उसी नजरिए से देखने की कोशिश करती हूँ, उसी नजरिए से समझने की और समझाने की कोशिश करती हूँ
जी। जितना हम आपको जानते हैं, मुझे लगता है कि आप लीक से थोड़ा हटकर लिखती हैं
जी। जी, मैं लीक से हटके लिखती हूँ, और इसी के लिए मैंने कहा भी है कि लीक पर चलना कभी भाया नहीं, लीक पर चलना कभी भाया नहीं, देखिए ये हट कहाँ ले जाएगा।
वाह बहुत सुंदर, सही बात है।
जी
जी, और कुछ सुनाए इसी विषय पर, लीक से हटकर कुछ, क्योंकि जैसी मेरी आपकी बात हुई, आपने कहा कि माँ पत्नी बहन की बातों को लेकर महिलाओं का बहुत शोषण हो चुका, अब कुछ और भी
जी
सोचना चाहिए, ऐसा आपने मुझे कहा, तो इसी विषय
जी
को थोड़ा आगे बढ़ाएं आप।
हाँ जी, जो बात आपसे उस दिन हो रही थी उसी एक्चुअली उस दिन जो जिक्र चला चला था उसके पहले भी एक बात थोड़ी चर्चा किसी से हुई थी, तो वहां पे ये सवाल आया था कि शादियां आजकल ज्यादा टूट रही हैं।
जी बिल्कुल
तो ये जब मुद्दा आया तो यहाँ वहां पे ये सुनने को मिला कि जो शादियां टूट रही हैं उसकी जिम्मेदार पढ़ी लिखी लड़कियां हैं।
जी
तो
बताइए
पढ़ी लिखी लड़कियां हैं इसलिए शादियां टूट रही हैं।
जी
तो ये जो चीजें हैं वो बिना कहे ही बहुत सारी बातों को इंगित कर गई,
बिल्कुल बिल्कुल
और वहीं से ये जिक्र चला कि दिमाग में बहुत सारी बातें आई कि शादियां इसलिए टूट रही हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बातें हैं वो ये है कि शादियां इसलिए टूट रही हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने साथ होने वाला अन्याय, अपने साथ होने वाली अनीति बर्दाश्त नहीं करती,
जी
वो उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, और उनका आवाज उठाना उनका मुंहफट हो जाना है, उनका मुंहजोर हो जाना है,
जी
वो अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, वो अब ससुराल में प्रताड़ना शारीरिक हिंसा के खिलाफ भी खड़ी हो जाती हैं, वो पति के सास ससुर के गलत ना करते हुए भी
जी
उनके सामने हाथ जोड़ने की बजाय पुलिस स्टेशन जा रही हैं,
जी
वो पति की अय्याशी और तानाशाही के बदले मिले कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हैं, वो माँ पत्नी बहन बेटी की भूमिका से आगे बढ़कर एक इंसान के बराबर सम्मान प्यार और हक मांग रही हैं, तो शायद शादियां इसलिए टूट रही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक अच्छा व्यंग भी है समाज को अगर देखा जाए तो, क्योंकि
जी
पढ़ लिख कर अगर हम अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं तो ये लड़ना नहीं है, ये तो अपने अधिकारों की आवाज उठाना है।
आवाज उठाना है। अब चूंकि समाज ने गूंगी बहरी महिलाओं का को इजाद किया है, उन्हें इस तरह बनाया है कि महिला का बोलना ये विनम्रता के खिलाफ है, उनका किसी भी बात का विरोध करना ये उनकी विनम्रता के खिलाफ है, उनके स्त्रीत्व को उनकी विनम्रता को इतना महिमा मंडित कर दिया गया है कि स्त्री भी कुछ बात करने से पहले 100 बार सोचती है कि ये बात
जी
कहीं उसके खिलाफ तो नहीं जा रही है।
जी
एक और बात इसी बात से याद आई मुझे कि अभी जैसे सर्दियों का सीजन गया, मैं
जी
सूरत में रहती हूँ तो यहाँ तो ठंडी ना के बराबर होती है, बहुत
जी
कभी कभार हल्की गुलाबी सर्दियां होती हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे देखा है लोगों को कहते हुए सुना है कि जब शादियों के मौसम में महिलाएं बिना स्वेटर के बिना शॉल के सज
जी
धज कर जाती हैं तो उसपे इतने चुटकुले इतने मीम्स इतने जोक्स
जी
सुनते हैं हम, आपने भी सुना होगा मैंने भी सुना है,
जी
हर बार
बिल्कुल
घूमते रहते हैं, लेकिन यही महिलाएं जब मई जून की दहकती दोपहरी में या सर्दियों में जब हाथ पांव जम रहे होते हैं ठिठुर रहे होते हैं, तब जब आपके लिए वो भोजन बनाती हैं खाना बनाती हैं तो वो सारे चुटकुले गायब हो जाते हैं,
जी
तब तब तो वो अन्नपूर्णा माँ बन जाती हैं, परिवार के प्रति समर्पिता नारी बन जाती हैं, और ना जाने क्या कौन कौन से महानता के विशेषण उन पे लाद दिए जाते हैं। तो
जी
हम अपनी सुविधा को चुनते हैं।
जी एक बात और भी चुभन देती है कि जितने भी मजाक बनते हैं वो पत्नी के रिश्ते से ही बनते हैं। आप देखिए जितनी कविताएं होती हैं, पति पत्नी मायके गई है भाई, बड़ा जरा सुख ले लो, इस टाइप की जो बातें होती हैं, ये भी तो आखिर एक गलत
जी
संकेत है।
जी 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 ये बातें उस दिन बंद हो जाएंगी जिस दिन पत्नी भी इसी तरह का जोक्स बनाना शुरू कर देगी।
महिलाएं भी इन
एकदम
चीजों का मजा लेती है। देखिए कोई सीरियल आते जी
मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाने जा रही थी
जी
कि जो महिलाएं हैं वो खुद अगर किसी उम्र दराज महिला पे उसके उम्र को लेकर जोक्स बनते हैं, किसी मोटी महिला के ऊपर जोक्स बनते हैं, किसी काली महिला पे जोक्स बनते हैं,
जी
तो जो जो महिलाएं गोरी हैं काली कम उम्र की हैं, मोटी नहीं हैं, वो उसका खूब एंजॉय करती हैं, मजे लेती हैं, और उनको लगता है कि क्या इसमें क्या हो गया, हमारे लिए थोड़े हैं। यानी उस वक्त तो वो एक महिला ही जब दूसरी महिला के साथ खड़ी नहीं हो रही है तो हम अपने इस पुरातन पंथी समाज की बात कैसे करेंगे।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पत्नियों को लेकर जो इतने जोक बनते हैं उसका कारण यही है कि औरतों ने जो खुद को नहीं बदला और अभी भी वो उसी चीज में उनका मजाक बनता है तो वो उसी में शामिल रहती हैं,
उसी में शामिल रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तो नहीं हूं ना इसमें।
जी बिल्कुल।
कभी एक पंक्ति मेरे ध्यान में आ रही है कि स्त्री बढ़ती है कितने ही खानों में, स्त्री जो है वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में पुरुष के साथ खड़ी हो जाती है।
जी जी।
स्त्री बढ़ती है कितने ही खानों में, हर रिश्ते में पुरुष पुरुष ही रहता है।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए सीरियल्स भी जो आते हैं कॉमेडी के तो उसमें पुरुष जो है वो महिलाओं का भेष धारण करके और मजाक बनाया जाता है, ये सब क्या है गलत, और इसको सारी महिलाएं भी देखती हैं और उसको पसंद करती है और हंसती है उस पर, वो ये कौन से मजाक है हंसने के।
जी नहीं, और हंस तो तब होती है जब वो उसके पीछे की गंभीरता को, इसके पीछे के अपमान को समझ ही नहीं पाती
नहीं पाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। को सुनाना चाहेंगी उर्मिला जी कोई अपनी रचना?
जी जी मैं रचना सुनाती हूँ क्योंकि बातें तो चलती रहेंगी।
जी बिल्कुल।
मैं एक दो पुस्तक जो मेरे इसी विषय से जुड़े हुए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ।
बिल्कुल सुनाए सर।
थोड़ा आसान है ये, थोड़ा मुश्किल भी है सफर भले लंबा, आगे मंजिल भी है। अब बिगुल बजाया है हमने परिवर्तन का, बस देह नहीं है हम सीने में दिल भी है। बस देह नहीं है हम सीने में दिल भी है।
वाह बहुत।
एक और धन्यवाद। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ
जी
कि ये वो ही जानता है कि जिस पर है जो बीता, जिस पर है जो बीता, वो वेद उपनिषद हो रामायण हो या गीता, रामायण हो या गीता, ये बात सारे ग्रंथ सुने ध्यान से सुने, ये बात सारे ग्रंथ सुने ध्यान से सुने, अब अग्नि परीक्षा नहीं देगी कोई सीता, न देगी कोई सीता, अब अग्नि परीक्षा नहीं देगी कोई सीता, न देगी कोई सीता। और जो बात पहले हो रही थी उसी बात पे और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ
जी जी
कि महिलाओं को कहा जाता है सब कुछ तुम्हारा है, ये घर द्वार तुम्हारा है, अब अधिकारों की मांग न करना, ये घर द्वार तुम्हारा है, अब अधिकारों की मांग न करना, घर पर राज तुम्हारा है, बस सीमा रेखा पार न करना, घर पर राज तुम्हारा है, बस सीमा रेखा पार न करना।
अच्छा व्यंग आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अधिकारों की बात करके सारी सीमा रेखाएं लगा दी जाती हैं।
जी और एक और मुक्तक पहुंचाती हूँ आप तक।
जी बिल्कुल सुनाए स्वागत है।
अंतर गिरह को अनमना हो खोलना पड़ा, खोलना पड़ा, और झूठ की तुला पे सच को तोलना पड़ा, तोलना पड़ा, कोशिश बहुत की मौन में खुद को समेट लूं, कोशिश बहुत की मौन में खुद को समेट लूं, जब चुप न रह सकी तो मुझे बोलना पड़ा, बोलना पड़ा, जब चुप ना रह सकी तो मुझे बोलना पड़ा, बोलना पड़ा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उर्मिला जी, आपकी कविताएं तो एकदम रूह को छू रही हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी न किसी थीम पर होता है, और इस बार की थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी। तो मैं
जी
आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं को किस स्तर पर समानता नहीं मिल रही है और क्या क्या होना चाहिए, कुछ इस विषय पर बताएं।
देखिए, लैंगिक समानता तो हमारे संविधान का भी एक हिस्सा है। और
जी
मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जो मानव विकास संघ है, ह्यूमन
जी
डेवलपमेंट इंडेक्स,
जी
जो हर साल जिसकी एक रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है विश्व स्तर पर, तो
जी
वहां पे हम लगातार पीछे ही हैं।
अच्छा
कुछ
बताइए।
127वां स्थान, 177 की लिस्ट में 127वां स्थान, 128वां स्थान, इस तरह का लगता है।
जी
तो वहां पे जब वो उसका जो तीन चार जो मुद्दे हैं, उसके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उसमें ये जो बड़ा मुद्दा है एक लैंगिक असमानता का,
जी
वो हमारे देश में बहुत ही भीषण स्थिति में है।
जी बिल्कुल
और अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो आधी आबादी है, आधी आबादी में अब खैर स्थितियां बदली हैं, बहुत ज्यादा बदली हैं,
जी
लेकिन फिर भी पूरी तरह से बदली है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इस आधी आबादी में मैं अधिकांशतः जो महिलाएं हैं
जी
वो घर संभालने का काम कर रही हैं, बच्चों के लालन पालन का काम कर रही हैं, और घर की जिम्मेदारियों को निभाने का काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर रही हैं या ये गलत है, लेकिन उससे जो राष्ट्र का विकास है, जो मानव विकास की मैं बात कर रही हूँ
जी
देश के स्तर पर, वो उससे पूरा नहीं होता। क्योंकि अर्थशास्त्र की दृष्टि में ये है कि किसी की भी जो शिक्षा पर लगने वाला खर्च है वो एक तरह से बैलेंस है उस व्यक्ति का। और
जी
अगर वो कुछ अपने साथ कुछ अधिक लेकर ना आए तो वो शिक्षा, हम अर्थशास्त्र की ही बात कर रहे हैं, तो
जी
वो शिक्षा पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि वो जो पैसा है शिक्षा पे लगने वाला, उसके सामने उसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिला।
जी
परिवार के स्तर पे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षित महिला है तो बच्चों को शिक्षित करेगी, उनमें संस्कार को रोपती है, वो एक अलग पहलू हो गया।
जी जी
तो यहाँ से जो लैंगिक असमानता की बात है, उस वो शुरुआत तो वहीं से होती है,
जी
जन्म के साथ। जन्म के साथ कुछ बातें होती हैं, जैसे अगर घर में, परिवार में बेटे का जन्म होता, अरे बेटा हुआ, बधाई हो बधाई हो, सबके चेहरे खुशियों से चहकते हुए लहकते हुए मिलते हैं।
जी
वहीं पर अगर बेटी है तो हालांकि स्थितियां बदली हैं,
हाँ जी, यही मैं कहने
लेकिन
वाली थी कि कुछ तो स्थितियां बदली हैं, काफी
हाँ
बदली हैं।
हाँ हाँ स्थितियां बदली हैं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि पूरी तरह से स्थितियां नहीं
नहीं
बदली हैं।
बदली बिल्कुल
तो वहां भी कुछ परिवार हैं जो बहुत स्वागत करते हैं, कुछ जगह लोग मुंह लटका के बैठ जाते हैं। और ये स्थिति तब और ज्यादा खराब होती है जब परिवार में एक या दो बेटी पहले से,
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो वहां पे ये, और अगर यही स्थिति पलट दे,
हाँ
एक बेटे के बाद दूसरा तीसरा बेटा हो जाता है, तो और ज्यादा
और
खुशी
जी
चौगुनी हो
बिल्कुल, तब
जाती
नहीं
है।
मुंह
तो
लटकेगा, बिल्कुल ठीक कहा जी।
ये पहली शुरुआत तो वहीं से होती है, उसके बाद उनके लालन पालन में, यानी जो माँ है पिता है उनकी पूरी मेहनत एक बेटी को दूसरे घर के लिए तैयार करने में होती है,
जी
कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें ऐसा आना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। पिता
जी
है तो समाज की स्थिति ऐसी है कि पिता को भी चिंता है कि बेटी है तो पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, उसके लिए दहेज जुटाना है, उसके लिए सामान बनाने, और साथ में अब तो उन्हें पढ़ाना भी है।
जी
तो इस तरह जो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो इसके कारण लैंगिक जो असमानता है वो समाज में नहीं आ सकती, जब
जी
तक उनका लालन पालन एक तरीके से नहीं होगा और उनको एक तरह से बोझ की तरह से नहीं देखा जाएगा, तब तक लैंगिक समानता। और वहां से आगे चलती हैं, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि एक व्यक्ति जब कमाता है, एक लड़का बड़ा होता है, वो अगर किसी बिजनेस में जाता है या कोई जॉब करता है, वो सुबह जाता है तो उसको खाना तैयार करके दिया जाता है। घर में जो भी महिला है, माँ
जी
है, बहन है, पत्नी है, सब करती हैं। और वो आता है तो फिर उसके लिए चाय दी जाती है, पानी दिया जाता है, शाम का भोजन उससे पूछ के बनाया जाता है।
जी
यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवार में कमा कर लाता है, परिवार
बिल्कुल
के अर्थतंत्र का मुख्य स्रोत है। तो उसके लिए घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं वो ऐसा करती हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन
जी
वही स्थितियां अगर हम पलट देते हैं,
जी
महिला सुबह जाती है और वो शाम को आती है, तो
जी
उसके साथ क्या इसी तरह का व्यवहार होगा?
बिल्कुल बहुत
ऐसा
मुश्किल
ऐसा होता है कि वो खुद सुबह बना के सबको खिला के बच्चों की तैयारी करके जाती है, शाम को आती है, वो अपना बैग रखती है और फिर किचन में घुसती है। तो
जी
ये सारी चीजें जो है, ये हमारी लैंगिक असमानता का ही है, जो समाज के अंदर बहुत गहरे बैठी हुई है, बहुत गहरे उसकी जड़ जड़ है। और इतनी जल्दी
महिलाओं से अपेक्षाएं बहुत की जाती हैं, आज भी महिला से अपेक्षा की जाती है सीता गांधारी या उर्मिला बनने की
जी जी बिल्कुल बिल्कुल
ही।
बिल्कुल, समय बदल गया, युग परिवर्तन हो गया, वहां वहां से चलते हुए हम यहाँ आ गए हैं, आज तकनीकी युग में आ गए हैं, लेकिन सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है, स्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो जो सर्वे कई बार होता रहता है सर्वे, तो जो एक सर्वे पढ़ा था मैंने, उसमें ये था कि जो लड़कियां हैं,
जी
इस दौर की लड़कियां,
जी
उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती।
जी
तो जब शादी नहीं करना चाहती तो उसका जब कारण जानने की कोशिश की गई तो ये लगा कि उनका ये कहना था कि हमने यहाँ मेहनत की है, हमने अपने आप को कुछ बनाया है, पढ़ाई की है और उतनी मेहनत की है जितने लड़के करते हैं, और उस मेहनत करने के बाद अब जब उसका फल खाने की हमारी बारी है, तो हम किसी और के घर पे जाके सुबह से शाम तक उनके अनुरूप बनने की, उनके अनुरूप ढलने की कोशिश क्यों करेंगे? तो
बिल्कुल
ये सारी चीजें, बस ये है कि जो हमारा हमारा जो भारतीय परिवार की व्यवस्था है, वो शुरुआत में टिकी तो इसी पर है कि स्त्री पुरुष पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया अगर छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, तो कैसे संतुलन बनेगा?
जी
ये बातें सुनने में बहुत आती हैं, कहीं भी बहुत जाती हैं,
जी
और इस
बिल्कुल
पे अमल कहाँ होता है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनी तो आज 50 साल से जा रही है लेकिन स्थितियां वही की वही हैं।
स्थितियां वही की रही हैं, बिल्कुल।
तो उर्मिला जी, आपकी आधी आबादी पर आपकी शायद कोई कविता है बड़ी प्रसिद्ध, अगर आप सुनाना चाहें तो
जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना रही हूँ।
के अवसर पर तो सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
जी, शायद इन्हीं सारे विचारों के झंझावात में बहते हुए ये लिखी भी गई थी,
जी
और
बिल्कुल
बिल्कुल आप उससे जोड़ पाएंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ कि
जी
इतिहास से लेकर पौराणिक समय से लेकर अब तक की जो स्थितियां हैं,
जी
उनमें जो हमारे पौराणिक पात्र हैं, त्याग, दया, क्षमा, करुणा के जो आदर्श स्त्री पात्र रहे हैं, तो उन सबकी वेदनाओं को वाणी देने की कोशिश की है।
जी
और देखिएगा इसकी वैचारिक भावभूमि।
जी बिल्कुल सुनाए, स्वागत।
एक पीड़ा है अंतर में, मुखर है वही मेरे स्वर में। एक पीड़ा है अंतर में, मुखर है वही मेरे स्वर में, कि झूठी रीति नहीं भाती, के झूठी रीति नहीं भाती, चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं गाती, मैं आधी आबादी चाहिए आजादी, मैं आधी आबादी, चाहिए आजादी। और गीत का बंद पढ़ती हूँ। मैं सदियों से पीड़ित नारी की गाथाएं लिखती हूँ, यशोधरा पर जो बीती वो विरह व्यथाएं लिखती हूँ। इस महानतम मारे भूमि की जटिल प्रथाएं लिखती हूँ, मैं शकुंतला के अंतर की व्यथा कथाएं लिखती हूँ। सोच कर नींद नहीं आती, सोच कर नींद नहीं आती, बोलो कैसे लिख पाऊंगी प्रेम भरी पाती, मैं आधी आबादी, चाहिए आजादी, मैं आधी आबादी, चाहिए आजादी।
बहुत सुंदर।
और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। मैं लिखती हूँ कहो अहिल्या को क्यों ऐसा शाप दिया। ये कथाएं सब जानते हैं, इसलिए मुझे उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिखती हूँ कहो अहिल्या को क्यों ऐसा शाप दिया, जग जननी सीता को आखिर ऐसे कैसे त्याग दिया। आजीवन वो रही अकेली, क्या ऐसा था पाप किया। राधा कृष्ण की जय हम कहते हैं, राधा कृष्ण की बातें करते हैं। प्रेम के सबसे पावन, सबसे महिमामयी प्रतीक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। लेकिन वहां भी कथा है कि जब श्री कृष्ण राधे को, राधा को छोड़ के आए, तो वापस वो उनसे मिलने नहीं गए। उसी बात को मैंने इसमें कहने की कोशिश की है कि मैं लिखती हूँ कहो अहिल्या को क्यों ऐसा शाप दिया, जग जननी सीता को आखिर ऐसे कैसे त्याग दिया। आजीवन वो रही अकेली, क्या ऐसा था पाप किया। बरसाने की राजकुमारी को क्यों ये संताप दिया। मैं तब तक चैन नहीं पाती, मैं तब तक चैन नहीं पाती, ये सम्मान की बाजी जब तक जीत नहीं जाती, मैं आधी आबादी, चाहिए आजादी, मैं आधी आबादी, चाहिए आजादी।
स्त्री वेदना को इतने मधुर स्वर में आपने ढाल कर पेश किया, बहुत अच्छा लगा। उर्मिला जी एकदम वाकई मन भारी हो जाता है इन बातों को देख सुनकर।
धन्यवाद भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, क्योंकि ये लगता है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी आज स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं जितनी बदलनी चाहिए थी। जी,
नहीं बदली है, बिल्कुल नहीं
जी।
बदली है।
हम सीता राधा और अहिल्या की बात करते हैं तो फिर बात आकर वहीं पर रुक जाती है आज के समय में भी।
जी।
आपने तो इतना मधुर गीत सुनाया कि मन कर रहा और आपसे कुछ सुनूं, कुछ और
जी
सुनाए।
जी मैं सुनाऊंगी। जैसे अभी आपने ये बात कही तो महिलाओं की बात हो रही थी,
जी।
तो जब किसी भी सभ्यता की महानता का जब मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें स्त्रियों को दी गई समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का आधार सबसे बड़ा होता है।
जी बिल्कुल।
तो इस आधार पर अगर हम भारतीय सभ्यता के कुछ जो हमारी भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से है और अब तक है, उसके कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ कमियां मिलती हैं कि महिलाओं को कहाँ उतना सम्मान, कहाँ उनको उतनी समानता और कहाँ उनको उतना प्यार मिला है। एक तरफ तो वो संवेदना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीती हैं,
जी
जितनी संवेदनाएं, जितनी भावनाएं उनके हिस्से में आती हैं, शायद ही किसी के हिस्से में आती हूँ, और दूसरी तरफ वो खुद उनसे वंचित रहती हैं।
जी
और ये ऐसी चीजें हैं कि जो वो हर किसी से कह भी नहीं पाती हैं, उनको अंदर ही अंदर उन चीजों को सहना होता है, अंदर ही अंदर उन चीजों को महसूस करना होता है।
जी
तो जब महिलाओं की, जब सम्मान की बात होती है और महिलाओं के जब बात आती है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि लोग ये नहीं जानते कि महिलाओं को क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगेगा, बजाय इसके ये कहना चाहिए कि महिलाओं को क्या ना पसंद है और हम वो काम ना करें।
बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने, कहा बहुत बड़ी बात कह दी, बिल्कुल ठीक कहा।
तो वो नहीं होता, उनके नापसंद पे ध्यान नहीं दिया जाता, अब उनकी पसंद, उस पसंद में गहने, कपड़े, ऐशो आराम की जिंदगी, उनका कंफर्ट जोन शामिल है।
जी बहुत ज्यादा कह दिया जाता है, सब कुछ तो मिला हुआ है तुम्हें, और क्या
हाँ,
चाहिए।
और क्या चाहिए, और क्या
जी
चाहिए, बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई लड़की अगर पढ़ना लिखना चाहती है, आगे अपना कुछ भविष्य बनाना चाहती है, तो उसको यही कहा जाता है सब कुछ है तो घर में तुमको गहना कपड़ा सब मिल रहा, और तुम क्या। लेकिन ठीक
और
है
तुम्हें
उसकी
बिल्कुल
जी वैचारिक भूख उसकी नहीं देखी जाती है, और इन चीजों को देखकर बस कह दिया जाता है कुछ
और
नहीं।
एक और जब सुनती हूँ, अक्सर आसपास सुनती हूँ कि जब लड़कियां हैं, लड़कियां तो नहीं, जब बहुएं हैं या महिलाएं हैं, किसी भी बुजुर्ग से अगर पांव छूकर उनका आशीर्वाद मांगती हैं, तो एक ही आशीर्वाद मिलता है, दूध हो नहाओ करके। तो
जी बिल्कुल
मैं उस कई बार ये सोचती हूँ, इसमें स्त्री कहाँ है, इसमें उसको क्या दिया गया, उसको कौन सा आशीर्वाद दिया गया, उसके पूरे वजूद को नकार दिया गया, उसकी सिर्फ पत्नी और उसके
माँ
माँ
के रूप में,
के रूप को ही सिर्फ हम स्वीकार रहे हैं।
लेकिन आजकल ये चीज थोड़ी कम हो गई है मैंने देखा।
हाँ, बस मैंने शुरुआत में मैंने वो बात कही कि
जी
स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन अभी उस तरह से नहीं बदल रही हैं जिस तरह से उनको बदलना चाहिए।
जी जिस तरह से लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं हर क्षेत्र में, उस हिसाब से बदल नहीं रहा उनके साथ।
हाँ, उस तरह से उनके साथ, और हर हर स्तर पे अभी उनका संघर्ष जारी है, हर स्तर पर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनकी जब वो कोई अपने लिए जॉब ढूंढती है तब से लेकर विवाह तक, हर तरफ उनका संघर्ष जारी रहता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ सुनाए उमिला जी आप।
जी, विषय यही चल रहा है तो मैं एक और गीत सशक्तिकरण का ही पढ़ना चाहूंगी।
जी अभी स्त्री सशक्तिकरण पर आप सुनाने जा रही हैं अपनी रचना, उसके बाद मैं आपसे फिर ये भी जानना चाहूंगी कि आपको इस तरफ क्या लगता है कि और क्या क्या करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा
जी
बात करेंगे, पर पहले आपकी कविता।
जी जी ना कोई कथा हूँ मैं, ना कोई पहेली, ना कोई कथा हूँ। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल
जी
है, तो
महिलाएं कह
हाँ,
देती हैं अपने लिए। जी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वहीं से ये गीत शुरू होता है मेरा।
जी
ना कोई कथा हूँ मैं, ना कोई पहेली, प्रीत की पुजारन में गीत की सहेली, ना कोई कथा हूँ मैं, ना कोई पहेली, प्रीति की पुजारन में गीत की सहेली। मूलता तो स्त्री वैसी है, वही है, वही कोमलता है उसके अंदर।
जी बिल्कुल
आगे गीत बढ़ता है कि द्वार नरक का कहकर मुझको दुत्कारा, कोई मुझे जीता है कोई मुझे हारा,
बस।
द्वार नरक का कहकर मुझको दुत्कारा, कोई मुझे जीता है कोई मुझे हारा, चौसर के पासों पर मैं गई हूँ खेली, चौसर के पासों पर मैं गई हूँ खेली, अग्नि परीक्षा मैंने हर युग में झेली, ना कोई कथा हूँ मैं ना कोई पहेली, प्रीति की पुजारन में गीत की सहेली।
सच में अग्नि परीक्षा हर युग में ही झेल ली है, बहुत ठीक कहा आपने।
और ये जो मेरा गीत है वो 3 युगों को परिभाषित करता है, जो हमने ये अभी बंद मैंने आपको सुनाया,
जी
वो सीता और द्रौपदी, हमारा जो पौराणिक युग था
जी
उस युग की बात थी। अब हम मध्य युग की बात में आते हैं, जो हमारा मध्यकालीन समय था उस दौरान क्या था और उसके बाद आधुनिक युग की भी बातें करूंगी।
जी बिल्कुल,
मध्य युग की तरफ चलते हैं। सब झूठी आन बान झूठी मर्यादा, मेरे ही कंधों पर सदियों से लादा। सब झूठी आन बान झूठी मर्यादा, मेरे ही कंधों पर सदियों से लादा। राजमहल हो कुटिया हो के हो हवेली, राजमहल हो कुटिया हो के हो हवेली। कांटों की सौगातें फूल सी हथेली, ना कोई कथा हूँ मैं ना कोई पहेली। प्रीति की पुजारन में गीत की सहेली। और आखिरी बंद में मैंने आधुनिक युग को परिभाषित किया है। अब सुनिए, जो परिस्थितियां बदली हैं, जो हम इतनी देर से कह रहे हैं, उन परिस्थितियों को मैंने वाणी दी है। मानस की चौपाई वेद की ऋचा भी हूँ, दुग्ध धवल चांदनी हूँ अग्नि की शिखा भी हूँ। मानस की चौपाई वेद की ऋचा भी हूँ, दुग्ध धवल चांदनी हूँ अग्नि की शिखा भी हूँ। तोड़ जीर्ण जंजीरें अब हूँ नित नवेली, तोड़ जीर्ण जंजीरें अब हूँ नित नवेली। मिश्री से मीठी हूँ नीम सी कसैली, ना कोई कथा हूँ मैं ना कोई पहेली। प्रीति की पुजारन में गीत की सहेली।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल वाकई आपने हर युग का चित्रण कर दिया अपनी सूचना में।
जी राणा जी,
और स्त्री सशक्तिकरण पर आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना जरूरी है इस क्षेत्र में अभी भी? क्योंकि जैसा हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जितना होना चाहिए तो हुआ नहीं, तो कैसे हो, क्या हो? खाली बात करने से तो नहीं कुछ हो जाएगा।
जी जी जी, सही कह रही है। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसका जो कार्यान्वयन है वो, जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शुरुआत जन्म के साथ होती है
जी,
तो ये शुरुआत भी जन्म के साथ ही होनी चाहिए।
बिल्कुल।
अब जब बेटी घर में, जब बेटी को बहुत लाड़ किया जाता है तो उसको बेटा कहकर बुलाते हैं, बेटा कहकर बुलाते
हैं, ये भी गलत है।
तो बेटी, बेटे को तो हम कभी बेटी नहीं कहते कि हमारा बेटा, बेटी जितना प्यारा है।
बिल्कुल।
तो बेटी बेटे जितनी प्यारी कैसे हो गई? तो तुलना करना, सबसे पहली बात तो अपने ही बच्चों में तुलना करना, ये बेटा है ये बेटी, सबसे पहले परिवार के स्तर पे बंद होना चाहिए। जब जब वहाँ पे दोनों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरह से जब उनका पालन पोषण होगा, उनको उनकी रुचि का जो उनका क्षेत्र है, जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है, उसमें उनको काम किया करने दिया जाएगा बिना किसी रोक टोक के, तो वहां से ही इसकी शुरुआत होगी। और मैं बताऊं, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा, बहुत स्कूलों में भी ये बात देखती हूँ
जी जी,
कि जो स्कूल है वहां भी ऐसा नहीं है कि उनको, लड़कियों को या लड़कों को, कई बार जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो भी क्लास में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो उनको नहीं कहनी चाहिए वहां पे, जहां से लगता है कि यहाँ पे लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव हो रहा है
जी।
बहुत बार, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन ये चीजें कई बार होती हैं।
लड़कियों के लिए
अगर मान लीजिए महिला शिक्षिकाएं हैं, लड़कियों के लिए ज्यादा जागरूक हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तो अंततो गत्वा उनको वही एक आइडियल स्त्री बनाने की मुहिम चल रही है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंपरावादी दृष्टिकोण पूरा।
जी बिल्कुल। और जब तक ये मुहिम नहीं, उनको सिर्फ बच्चे के रूप में, उनको एक व्यक्तित्व की एक संपूर्ण इकाई के रूप में, जब तक आगे बढ़ने का और अपनी बातों को व्यक्त करने का, अपने तरीके से जीने का, तरीके से अपने तरीके से जीने का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम समाज के मानदंडों को तोड़ दें, जो समाज ने निर्धारित किया। अच्छाइयां समाज लड़कों से भी चाहता है और लड़कियों से भी चाहता है।
जी बिल्कुल।
समाज ये नहीं कहता कि लड़कियां ही अच्छी रहें, लड़के बुरे हो जाएं तो चलेगा। तो समाज के मापदंड जो हैं उनको बनाए रखते हुए दोनों को ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उनका पालन पोषण किया जाना चाहिए।
बिल्कुल।
बेटी को घर से दूसरे के घर जाना है, या वो बेटी पराई वस्तु है, दूसरे के घर की है, ये जो चीजें रोप दी जाती हैं उसके मन में, ये चीजें उसके पूरे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं विकलांगता दे जाती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो यहाँ से जो शुरुआत घर की चौखट के अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। इससे हम समाज को तो तभी बदल सकते हैं जब हम अपने स्तर पे बदलाव करें ना।
घर से बदलेगा तो समाज खुद ही बदल जाएगा।
खुद ही बदल जाएगा। बिल्कुल
ठीक कहा आपने। बिल्कुल। और यही चीज घर में होती नहीं है जैसा आपने कहा, तो वो व्यक्तित्व तो पूरा विकलांग बन जाता
है। वही अब आप सोचिए कि एक बेटा है, एक बेटी है, और अगर कुछ काम है घर में, माँ है, तो वो बेटी को बोल देगी कि तुम ये कर लेना, तुम वैसा कर लेना, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। वहीं पे बेटा बैठा है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो दोस्तों के साथ घूम रहा है, पर वो घर की जिम्मेदारियों से एकदम अलग है।
जी जी ठीक कहा आपने। बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो कि होती है घरों में,
जो होती है घरों में। बिल्कुल। और ये इस स्तर पे होती है एक धीमे जहर की तरह कि वो कहाँ कहाँ घुलता चला जाता है, पता ही नहीं चलता।
शुरू से इतना होती जाती है कि वो आदत पड़ जाती है करने वाले को भी और कहने वाले कराने वाले को भी।
जी
ठीक कहा आपने। बिल्कुल। कुछ सुनाना चाहेंगे उर्मिला जी आप?
अब अगर समय खत्म हो गया हो तो।
नहीं नहीं, समय है आपके लिए तो पूरा समय है, आप जितना चाहे सुनाए, और एक रखना तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपकी। और
जी सुना जी, मैं पढ़ती हूँ। महासमर की रण फेरी हूँ, महासमर की रण फेरी हूँ, द्रुपद सुता का चीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, महासमर के रण फेरे हूँ द्रुपद सुता का चीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं। कल कल करती निर्झरिणी को मत बांधो तटबंधों में, कल कल करती निर्झरिणी को मत बांधो तटबंधों में, ध्रुव तारे सी अटल रही हूँ मैं सारे संबंधों में, प्राणदायिनी सलिला हूँ मैं, प्राणदायिनी सलिला हूँ मैं, शिला नहीं प्राचीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं। परंपरा का दोहन करके गठरी मेरे सर बांधी, इसके पहले वाले गीत में भी ये बातें आ गई थोड़े बहुत अर्थ में। परंपरा का दोहन करके गठरी मेरे सर बांधी, शीतल मंद हवा थी लेकिन आज बन गई हूँ आंधी, मुझे बांध कर रोक सके, मुझे बांध कर रोक सके ऐसी कोई जंजीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। व्यक्त करूंगी मैं अब खुलकर मन की गहन विकलता को अभिव्यक्त किया जाता
है। जी जी बिल्कुल।
व्यक्त करूंगी मैं अब खुलकर मन की गहन विकलता को, सौ सौ पहरों में बांधा है युग ने सहज चपलता को, अब मुखरित हूँ दिग दिगंत में, अब मुखरित हूँ दिग दिगंत में, मैं गूंगे की पीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, महासमर की रणभेरी हूँ द्रुपद सुता का चीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं, चलती फिरती युग गाथा हूँ मैं कोई जागीर नहीं।
आज हमारे महिला दिवस के कार्यक्रमों का इतना सुंदर आगाज हुआ है कि मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितना अच्छा लगता है, और अभी लग रहा आपको सुनती ही जाऊं मन तो अभी भरा नहीं, आप कहना चाहे तो और कह सकती हैं जाते जाते।
भावना जी आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पर मौका दिया और ऐसी बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो बातें कहने के लिए हम हर एक से नहीं कह पाते, मन में रहती हैं, लेकिन उसके लिए जो मौसम और अनुकूलता और उसका मौका, तीनों चीजें आवश्यक हैं। तो ये चीजें, ये आज तीनों ही चीजें थी, मौसम था, मौका था और उसकी जरूरत भी थी, इसलिए इतनी सारी बातें कह गई मैं और मेरे गीतों को आपने सुना। तो बस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि स्त्री सिर्फ देह नहीं है, वो देह के भीतर एक धड़कन है, कोमल अनुभूतियों से भरा हुआ हृदय है उसके पास, जो उसके भावों में और उसके भावों के विस्तार में है। वो अपनी संपूर्णता में स्त्री है, लेकिन बहुत कम लोग उस स्त्री तक पहुंच पाते हैं। वो बाहरी तिलिस्म में स्त्री ढूंढते हैं और स्त्री वहां मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिल सकती। तो मुझे एक बड़े शायर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके मन तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके मन तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
बहुत सुंदर,
बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया उर्मिला जी, और हम ऐसे ही आपको सुनते रहें, यही हमारी कामना है।
बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद।